malam hari. Gopi jana wala bhar, wala bhari. Thank you.
Swami Shukra Paramahansa ki aur jo hai.
जय ओम विष्णु जवाई के भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की श्री श्री मेघनंदी वॉल्यूम श्री श्री गौणताय की श्री श्री राधा पद साधी ललता विशाखा की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की घोर प्रेमानंद वंडर कृष्ण प्रभु आई लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू द ऑडियंस. Should I? You can go, I'll just take a minute. So, ye hai hamare Vada Krishna Prabhu, peeche khade hain aapke. Ye ISKCON ke Bangalore Mandir ke president hain. Okay. Hare Krishna. Oh. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण. आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत. आप सब यहां उपस्थित हो इसलिए उपस्थित हो क्योंकि आपकी भक्ति योग में रुचि है. सच बात है. और भक्ति योग का अर्थ है प्रेम के साथ सेवा करना शास्त्र पर आधारित. तो आज हम आपको भागवत अंग 34 स्कंद का एक प्रसिद्ध श्लोक पढ़कर सुनाएंगे जिसमें ब्रह्मा जी के पुत्र कुमार जो है प्रीतु महाराज को उपदेश दे रहे हैं कि हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकते हैं. तो आप सब भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो? सब पक्का? कई तो दीक्षित भक्त उपस्थित हैं सभा में, कई और भक्त उपस्थित हैं जो सोला माला करते हैं और कई अतिथि भी उपस्थित हैं. पर अक्सर ये अनुभव है कि जो अतिथि भी इस्कॉन मंदिर में आते हैं इसीलिए आते हैं क्योंकि उनकी कृष्ण भक्ति में रुचि है. यह हमारा अनुभव है सारे विश्व में. वैसे तो हर शहर में अनेक मंदिर हैं पर इस्कॉन मंदिर में जो आते हैं उनकी खास रुचि है भक्ति योग में और साधु संघ के द्वारा यह रुचि बढ़ते जाती है. तो समय का थोड़ा अभाव है. यह है भागवतम 34 स्कंद 22वां अध्याय श्लोक नंबर 24. मैं जीता मीता प्रभु से निवेदन करूंगा कि मैं आपको अनुवाद पढ़कर सुनाए.
हाँ, अनुवाद मेरे पीछे दोहराए. आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह अहिंसक हो, महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन करे, भगवान की लीलाओं के अमृत का सदैव स्मरण करे, बिना किसी भौतिक कामना के यम नियमों का पालन करे और ऐसा करते हुए दूसरों की निंदा ना करे, भक्त को अत्यंत सादा जीवन बिताना चाहिए और विरोधी तत्वों की द्वैतता से विचलित नहीं होना चाहिए. उसे चाहिए कि वह उन्हें सहन करना सीखे. तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की. भक्त वास्तव में साधु पुरुष होते हैं. साधु अथवा भक्त का पहला गुण अहिंसा है. जो लोग भक्ति पथ में चलने या भगवान के धाम वापस जाने के इच्छुक हैं उन्हें पहले अहिंसा का अभ्यास करना चाहिए. साधु को तितिक्षवा कारुणिका भागवत 3:25-21 कहा गया है. भक्त को सहिष्णु एवं अन्यों के प्रति अत्यंत दयालु होना चाहिए. उदाहरणार्थ यदि उसे कोई चोट लगे तो उसे सह लेना चाहिए, किंतु यदि किसी अन्य को चोट लगे तो भक्त को ये सह्य नहीं होता है।
मोम ज्ञान नंदस्य ज्ञानंजना शाचा चक्षुर्मिलितानेन तस्मै श्री गुरवे श्री चैतन्य मनोवेस्ताम सावितां येन भूतले स्वयं रूपा कदामयां ददाति स्वाप वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपां सगजतं सागना रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सुमधुतम् परिजना साहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितम हे कृष्ण पूर्णा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते सप्ता कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सूति देवी प्रणमामि हरे वांचा का जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाय हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। तो ये श्लोक का उच्चारण सनत कुमार कर रहे हैं। आप सब सनत कुमार से परिचित हो, ये हैं ब्रह्मचर्य के पुत्र जिन्हें चार कुमारस के नाम से जाना जानते हैं। हरे कृष्णा सुनाई दे रहा है आपको? मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है इसलिए सुनाई दे रहा है उस कोने में। तो ये श्लोक का उच्चारण ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं कुमारंस वो कर रहे हैं और ये उपदेश दे रहे हैं एक राजा को जिनका नाम था पृथुमराज। पृथुमराज की कथा आप भागवतम के 34 स्कंद में प्राप्त करते हो। श्रीमद् भागवत का जो उपदेश है ये सबसे ऊंचा उपदेश माना जाता है। जिगामा गल्प गरोर गलितम फलम। और इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं और भगवान उनके भक्तों की लीलाओं का वर्णन है और शुरू से अंत तक एक ही मूल संदेश है, वो यह है कि भक्ति योग ही एक माध्यम है जिसके द्वारा आप असली सुख शांति प्राप्त कर सकते हो। तो पृथ्वीराज पूरे पृथ्वी के सम्राट थे और उन्होंने प्रजा को आध्यात्मिक उपदेश दिया। शास्त्र में कहा जाता है कि अगर कोई राजा या नेता बने तो इसकी जिम्मेदारी होती है कि प्रजा को आध्यात्मिक उपदेश भी दे। ये नहीं कि जैसे आज के वातावरण में आपके नेताओं का कोई चरित्र है ईमानदार है और उनके मन में एक ही भाव रहता है जितना कर लग सकता है जितना लूट सकते हैं लूटो। शास्त्र में कहा गया है कि कोई अधिकारी अगर केवल कर ले और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे तो उसको परिणाम भुगतना पड़ता है। तो पितृ महाराज ऐसे तो भगवान के अवतार थे पर जब कुमारद उनके महल में आए तो उन्होंने बड़े आदर से उन्हें स्वागत किया और उनसे निवेदन किया कि आप मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए। जब हम संतों की संगत में आते हैं तो हमारा भाव क्या होना चाहिए? कोई भौतिक आशीर्वाद मांगे। हमारा भावना यह होने चाहिए कि हम आध्यात्मिक ज्ञान की भीख मांगे, ये भीख मांगे कि हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो यही था पृथ्वीराज का भाव। तो कुमार ने पहले तो ये कहा कि साधु संगत का लाभ उठाओ। इस अध्याय में पिछले श्लोकों में संत कुमार ने कहा कि अगर हम भक्ति के मार्ग में उन्नति करना चाहते हैं तो किस चीज की आवश्यकता है? साधु संगत की आवश्यकता है। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जब गए तो बड़े प्रसिद्ध भक्त रामानंद रॉय की संगत में आए, उनसे परिचय हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद रॉय से अनेक प्रश्न पूछे, जिनमें एक प्रश्न ये था कि भक्त के लिए सबसे अधिक कष्ट की क्या स्थिति है। और रामानंद रॉय ने कहा, भक्तों की संगत से जुदा हो जाना ये सबसे अधिक कष्ट की स्थिति है। और सारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि हमें भक्तों की संगत का लाभ उठाना चाहिए। तो आप सब जो यहां उपस्थित हो, इसलिए उपस्थित हो क्योंकि आपकी आध्यात्मिक जीवन में रुचि है। और जिस प्रकार भौतिक क्षेत्र में हमारा प्रयास रहता है कि हम उन्नति करें, है कि नहीं? मान लो आप कोई नौकरी कर रहे हो तो अगर आपको आपके साहब मालिक तनख्वाह नहीं बढ़ाए तो आपको अच्छा लगता है? आप चाहते हो पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में उन्नति करो, अच्छे नंबर में पास हो। नौकरी कर रहे हो तो आप चाहते हो कि नौकरी में भी आप आगे उन्नति करो। तो इसी प्रकार भक्ति के मार्ग में भी हमारा क्या भाव होना चाहिए कि हम भक्ति के मार्ग में उन्नति करें। और साधु संगत द्वारा यह संभव हो सकता है। इसलिए चैतन्य चरितमृत में भी कहा गया है, साधु संगत सर्वशास्त्र काया, लावा मात्र साधु संगत सर्वसिद्धि आया। हमारे गुरु महाराज जी अकेले गए थे पश्चिम देशों में कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए। उनके गुरु महाराज ने 1922 में उन्हें आदेश दिया था, ये कहा तुम पढ़े लिखे युवक हो, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देश में। और इसलिए भक्ति सिद्धांत जी ने आदेश दिया क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी कि पृथ्वी में आज जगदा नगर आदि ग्राम, पृथ्वी में जितने नगर गांव है सब जगह यह हरि नाम पहुंचेगा। प्रभु जी ने प्रयास किया, संगत दी और सारे विश्व में यह आध्यात्मिक संस्था का प्रभाव है, प्रचार है। तो आप सब जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, आप सबका ये नियम होना चाहिए कि कम से कम हफ्ते में एक बार दो बार आप कहाँ आओ, मंदिर में आओ, भक्तों की संगत का लाभ उठाओ। और साधु संगत का लाभ उठाओगे तो भक्ति में उन्नति कर पाओगे। और अगर हम सदा और भक्तों की संगत में ही रहेंगे, और भक्तों की संगत में रहना तो पड़ता है क्योंकि आप लोग नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, बहुत ही कार्य में जुड़े हो, पर तो इसके साथ भक्तों की संगत का भी लाभ उठाना चाहिए। तो कुमार ने कहा है कि हमें भक्तों की संगत में रहना चाहिए, उसके द्वारा भगवान के प्रति जो आकर्षण है वो बढ़ेगा। तो आज के श्लोक में क्या कहा जा रहा है, आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वो अहिंसक हो। जो भक्त है वो किसी को कष्ट नहीं देना चाहता, किसी को नहीं। इस विषय में आप भागवतम के 5वें स्कंद में जद भारत की कथा पढ़ते हो, जो पूर्व जन्म में भारत महाराज थे और जब उन्होंने जद भारत के रूप में जन्म लिया तो एक समय एक राजा जिनका नाम था महाराज रोगना, उन्हें पलकी में उठाकर ले जा रहे थे कथा सुनने के लिए। प्राचीन समय में जो राजा थे उन्हें पलकी में उठाकर ले जाते थे, और राजा की इच्छा थी जल्दी से चले, दूसरे सेवक इतनी तेजी से नहीं पलकी को उठ ले जा रहे थे। तो वहां उन्होंने देखा एक वेल बिल्ट, बड़े अच्छे बिल्ट ब्राह्मण व्यक्ति खड़ा है, इसका नाम था जदभाला। तो सेवकों ने कहा आओ राजा को उठाने में सहयोग दो, तो वो जुड़ गए साथ, और राज जद भारत दूसरे सेवकों का अंतर क्या था, दूसरे सेवक तो पैर रख रहे थे, ध्यान नहीं दिया क्या नीचे है नहीं, पर जद भारत पैर रखने से पहले देखते थे कि आगे 3 फुट तक कोई जीवात्मा तो नहीं है, जिसके कारण फल की तेजी से जाने की वजह ज्यादा धीमे जाने लगी, और राजा को राजा क्रोधित हुआ। तो यही राजा जब उन्होंने जद भारत की वाणी सुनी तो उनके शरणागत हो गया। तो ये एक संक्षेप में एक उदाहरण दिया है भगवान के एक ब्राह्मण भक्त का, जो कि इतने ध्यान से चल रहा था कि किसी प्रकार से किसी जीवात्मा को कष्ट नहीं दिया जाए। इसके साथ आप चैतन्य चरितमृत में कथा पढ़ते हो कि एक समय एक शिकारी था जिसका नाम था मृगारी, जो कि जानवरों को घायल करने में बड़ा आनंद अनुभव करता था, और जब वो मरते थे तो उनको बेचकर अपनी रोटी कमाता था। महाद मुनि एक दिन जंगल में आए, उन्होंने अनेक घायल पशुओं को देखा, पूछा कौन है इसका कारण, और फिर जब पता लगा तो उन्हें उपदेश दिया। इस भिखारी में ऐसा परिवर्तन आया कि भविष्य में वो पैर को भी नहीं रखता था पृथ्वी पर, हाँ ये देखे बिना कि वो जीवात्मा तो नहीं है। तो जो भगवान के भक्त हैं वो अहिंसक, किसी को कष्ट नहीं देना चाहते। ये नहीं कि आजकल के जो बुद्धिस्ट हैं, बुद्धा जी ने अहिंसा का प्रचार किया था, कहेंगे हम बुद्धिस्ट हैं और सब कुछ खाएंगे मांस वगैरह। तो जो वैष्णव हैं वो किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। महान आचार्य के पच्चीरों के अनुगमन करें, जो आध्यात्मिक जीवन आपको चाहिए तो महान आचार्यों की जो शिक्षा है उसके आधार पर हमें चलना चाहिए। रूपा गोस्वामी जी ने हमें अनेक ग्रंथ दिए हैं, और जिनमें खास करके 2 ग्रंथ बड़े प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु और श्री उपदेशामृत। तो श्री उपदेशामृत ग्रंथ में वो कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या करना चाहिए, तत्त्व कर्म प्रवर्तनाद, जो महान आचार्यों की शिक्षा है उसके आधार पर हमें आध्यात्मिक जीवन बिताना चाहिए। आज अनेक धार्मिक संस्थाएं हैं भारत में भी और सारे विश्व में, आप भारत की धार्मिक संस्थाओं को अजमाओ और ये अगर देखो कि उनकी जो शिक्षा है क्या शास्त्र पर आधारित है, क्या महान आचार्यों पर आधार की शिक्षा पर आधारित है, तो आप देखोगे क्या बहुत कम संख्या में है। तो आध्यात्मिक जीवन निर्भर होना चाहिए महान आचार्यों की शिक्षा के ऊपर। उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी जब ग्रंथों का अनुवाद भी करते थे तो अपने सामने समक्ष रखते थे क्या महान आचार्यों के तात्पर्य को, और उनको पढ़कर प्रभुपाद जी ने हमें तात्पर्य दिए हैं जो आप पढ़ते हो उनके ग्रंथों में। एवं पर्व प्रप्त में मान राजेश्वर विदु, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है कैसे आता है, गुरु परंपरा के द्वारा, और महान आचार्यों की जो शिक्षा है वो 100% निर्भर है शास्त्र के ऊपर। प्रभुपाद जी ने जब भगवद गीता का अनुवाद किया उन्होंने भगवद गीता का अनुवाद निर्भर किया किस पर, बालादेव विद्याभूषण जिन्होंने भगवद गीता के ऊपर तात्पर्य दिया था। प्रभुपाद जी ने हमें जो शिक्षा भी दी 100% 90 भी नहीं निर्भर है महान आचार्यों की शिक्षा पर। और अगर हम आचार्यों की शिक्षा के आधार पर चलोगे तो आप कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकोगे, और इसलिए हमें महान आचार्यों की शिक्षा के आधार पर चलना चाहिए। गुरु साधु शास्त्र आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें गुरु द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करना चाहिए। इस विषय में चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पहले कदम में हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए, फिर आगे सेवा करनी चाहिए, आगे दीक्षा ग्रहण करना चाहिए, आगे पूछो कि मुझे क्या त्यागना चाहिए भक्ति के मार्ग में उन्नति करने के लिए। और आगे अगर कुछ त्यागना भी पड़े तो उसे किसी कीमत में त्यागो। मान लो आपको कुछ गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज के लिए अगर कोई त्यागना भी पड़े आप त्यागते हो। तो गुरु साधु शास्त्र, गुरु जो है हमें शिक्षा देता है साधु की शिक्षा पर आधारित, और जो साधु है वो शिक्षा देते हैं शास्त्र पर आधारित। और शास्त्र का अर्थ क्या है, भगवान की वाणी। तो अगर हम महान आचार्यों की शिक्षा के आधार पर चलेंगे तो फिर आप आध्यात्मिक उन्नति अवश्य की कर सकोगे। हमारे आचार्यों ने हमें अनेक ग्रंथ दिए हैं, उदाहरण के लिए चैतन्य महाप्रभु जी के जो प्रसिद्ध भक्त थे वृंदावन के 6 गोस्वामी, उन्होंने हमें अनेक ग्रंथ दिए हैं, अनेक शिक्षा दी है। और एक रूप से आप कह सकते हो हर प्रश्न का उत्तर है इन ग्रंथों में। ये जो गोस्वामी थे वृंदावन के, उन्होंने हर प्रकार के सुख को त्यागा। रूप और सनातन आज से 500 साल पूर्व जो इस पृथ्वी के सबसे प्रसिद्ध राजा थे उनके राज्य का शासन कर रहे थे, उनकी इच्छा नहीं थी इस कार्य में जुड़ने के लिए, जबरदस्ती उन्हें जोड़ा गया इस कार्य में। और थोड़े समय के लिए दोनों भाइयों ने ये कर्तव्य निभाया, फिर रूपक गोस्वामी ने सरकारी नौकरी त्यागी और चैतन्य महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार आए वृंदावन में, जहां उन्होंने अनेक मंदिरों की स्थापना करवाई प्रेरणा देकर और अनेक ग्रंथों की रचना की। सनातन गोस्वामी उनके भाई, उन्हें जेल में डाल दिया था नवाब ने। सनातन गोस्वामी की रुचि नहीं थी इस कार्य में जुड़े रहने के लिए, तो उन्होंने राजा को सूचना भेजी कि मैं बीमार हूं। पर वो 30 ब्राह्मणों के साथ बैठकर भागवत का अध्ययन कर रहे थे। जब राजा को पता लगा कि बीमार नहीं है, ठीक है, तो राजा ने कहा वापस जिम्मेदारी उठाओ राज्य के शासन की। पर वो नहीं माने तो उन्हें जेल में भी डाल गया। वे जेल से बड़ी कठिनाई से निकले। तो और रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय के एक सबसे धनी मजुमदार खानदान के भी एक लौटे एक ही पुत्र थे। हर प्रकार की सुविधा थी। जब बचपन में भी वो घर से निकलते थे तो उनके साथ 12 सिपाही आगे बढ़ते थे उनकी सुरक्षा के लिए। पर उन्होंने हर प्रकार के सुख को त्यागा, किस लिए, भक्ति निभाने के लिए। और रघुनाथ दास गोस्वामी अंतिम दिनों में 22 घंटे दिन में जाप करते थे। मुश्किल से एक डेढ़ घंटा सोते थे, उनके दर्शन के लिए हजारों लोग आते थे, लगभग 2000 बार दिन में वो लोगों को प्रणाम करते थे, और खाने के लिए क्या थोड़ा सा चना मिलता। फिर गोस्वामी ने हमें अनेक ग्रंथ दिए हैं, और प्रभुपाद जी ने खास करके इन दो ग्रंथों का अनुवाद किया, भक्ति रसामृत सिंधु और श्री उपदेश। आप भक्तों को पढ़ना चाहिए, आप भक्तों के आप में से कितने भक्तों ने श्री उपदेश में पढ़ा है? निवेदन है सब पढ़िए श्री उपदेश में, छोटा ग्रंथ है केवल 11 श्लोक के साथ, पर हर श्लोक का बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। तो कुमार ने कहा आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें एक तो अहिंसा का पालन करना चाहिए, दूसरा महान आचार्य के शिष्य के आधार पर चलना चाहिए। आगे आगे क्या कहते हैं, भगवान की लीलाओं के अमृत का सदा स्मरण करें। तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। भगवान ने कई श्लोकों में ये कहा है कि हमें उनका स्मरण करना चाहिए। कौन सा है वो प्रसिद्ध श्लोक जिसमें भगवान ये संदेश दे रहे हैं? मनमना भावा मद भक्तो मध्य जी मन नमस्कार मां में वाच सत्यम देव पति जने पिरोशु। तो भगवान इस प्रसिद्ध श्लोक में क्या कह रहे हैं? मेरा स्मरण करो, मेरा भक्त बनो, मेरी उपासना करो, मेरी पूजा करो, और अगर तुम ये सब करोगे तो क्या लाभ होगा? अंत में भगवान के धाम लौटोगे। तो यहां कहा जा रहा है भगवान की लीलाओं का सदा स्मरण करो। भगवान की लीलाओं का स्मरण करोगे तो आप अपने मन को बचा सकोगे गलत विचारों से, है कि नहीं? और अगर भगवान की लीलाओं का स्मरण नहीं करोगे तो आपका मन भटकेगा कहां? गलत स्थानों में। प्रभुपाद जी एक सरल उदाहरण देते थे, अगर आपके ग्लास में पानी है तो दूध डालने की गुंजाइश नहीं, तो अगर वो खाली रहेगा या आधा रहेगा तो आप डाल सकते। तो भगवान की लीलाओं का स्मरण और भगवान की लीलाओं के साथ उनके भक्तों की लीलाओं का स्मरण। भगवान की लीलाओं का वर्णन भागवतम में है, चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाओं का वर्णन चैतन्य चरितमृत में है। प्रभुपाद जी जो उनके शुद्ध भक्त थे, जिन्होंने कृष्ण भक्ति को सारे विश्व में पहुंचाया, उनकी लीलाओं का स्मरण की चर्चा भी है कहां? प्रभुपाद लीलामृत में। तो हमें किसी न किसी रूप से भगवान की लीलाओं का स्मरण में रुचि बढ़ानी चाहिए। तो ये संभव होगा अगर हम इन ग्रंथों का भी अध्ययन करेंगे। सच बात है, अगर हम भगवान के ग्रंथों का अध्ययन ही करेंगे तो लीलाओं का ज्ञान कैसे बढ़ेगा। इसलिए इन ग्रंथों का अध्ययन भी आवश्यक है, और प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं इनका अनुवाद भारत की लगभग हर भाषा में हो चुका है, और पूरे विश्व में 70 से अधिक अंतर भाषाएं हैं जिनमें इनका अनुवाद हुआ है। तो इन ग्रंथों का हमें बकायदा अध्ययन करना चाहिए। आप ऐसे कितने भक्त हो जो भगवद गीता को रोज पढ़ते हो, और कितने भक्त हो जो श्रीमद भागवत को रोज पढ़ते हो? बहुत कम। और कितने भक्त हो जो कि चैतन्य चरितमृत को कम से कम हफ्ते में एक या दो बार पढ़ते हो? ओ, कोई नहीं। और कितने भक्त हो जो कि प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हो कभी कभी? तो आप सबको क्या करना चाहिए? अध्ययन बढ़ाना चाहिए। तो यह कहा गया है भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। भगवान के अनेक लीलाएं हैं, चैतन्य महाप्रभु की एक बड़ी प्रसिद्ध लीला है। एक भक्त थे चैतन्य महाप्रभु जी के, जिनका नाम था खोलाबेचर श्रीधर। खोलाबेचर श्रीधर भौतिक दृष्टि से गरीब थे, उनका छोटा सा व्यापार था। क्या? केले के पत्तों के प्याले बनाते थे और केले बेचते थे। छोटी सी दुकान थी उनकी, रहने के लिए एक कमरा था और उस कमरे में छत भी नहीं थी। पहनने के लिए उनके पास एक ही धोती थी जिसमें भी कई छेद थे और पूरे घर में एक ही बर्तन था। आपके घर में कितने बर्तन हैं? पूरे घर में एक ही प्याला था जो इतना पुराना था कि कृष्णदास काविराज जी कहते हैं, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, इतना पुराना टूटा हुआ कि कोई चोर भी उसे नहीं छुए। तो ये खोले हुए जो श्रीधर दिन रात भगवान के नामों का उच्चारण करते थे और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं रोज उनकी दुकान में जाते थे। और उनकी दुकान में चैतन्य महाप्रभु ने छोटी आयु में ही संस्कृत का एक महाविद्यालय का विद्यालय खोला था। तो रास्ते में चैतन्य महाप्रभु रोज खुले बचे श्रीधर की दुकान में रुकते थे और उनसे पूछते थे, तो आज क्या भाव है केले का? तो कहता था, एक पैसा दर्जन। नहीं, बहुत महंगा है। तुम बहुत नफा कमा रहे हो, तुम बहुत धनी हो, मुझे पता है तुमने धन अपना छुपाया हुआ है। तो खुले में जो श्रीधर कहते थे, अगर मैं इतना धनी हूं, अब मेरे घर में आके देख लो क्या धन है मेरे पास, देख लो मैंने आपसे छुपाया थोड़ी है। फिर महाप्रभु कहते थे, एक दिन मैं पूरे विश्व को बताऊंगा तुम कितने धनी हो, आज नहीं। फिर महाप्रभु रोज सौदा करते थे। कई बार खोले बचे श्रीधर तंग आके कहता था, आप किसी और दुकान में क्यों नहीं चले जाते, मेरी दुकान में क्यों आते हो रोज? अगर आपको दूसरी दुकान में सस्ता मिल रहा है तो वहां ले लो। फिर महाप्रभु कहते थे, नहीं, यू आर अ स्टेडी सप्लायर, मैं दूसरी दुकान में क्यों जाऊं? तो इस प्रकार दोनों का बड़ा गहरा संबंध था। और खोले बचे श्रीधर की थोड़ी सी आमदन थी, कितना आप कमा सकते हो केले के प्याले बेचकर? उसका 50% वो खर्चते थे गंगा की सेवा में। एक समय उन्होंने जब कहा महाप्रभु को, गंगा की सेवा करते हैं, तो महाप्रभु ने कहा, गंगा तो मेरे चरणों से आ रही है। खोला बचे श्रीधर ने कहा, विष्णु विष्णु विष्णु, कान बंद कर दिया। कहा, उन्हें पता नहीं था चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। और इस प्रकार का बड़ा गहरा संबंध था। और एक समय जब चैतन्य महाप्रभु अपने देवीय रूप को प्रकट कर रहे थे, उन्होंने 5 भक्तों को निमंत्रण दिया था इस रूप का दर्शन प्राप्त करने के लिए। जब उन्होंने अपने भक्त को भेजा खुले बचे श्रीधर को लाने के लिए, उन्होंने कहा, तुम बड़े आसानी से उसका घर, उसके घर को खोज लोगे, क्योंकि वो घर में रात के सारी रात भी वो क्या करता है, हरे कृष्ण कीर्तन करते। और जो उनके पड़ोसी थे वो कहते थे, इस आदमी को भूत सता रहे, खुद भी नहीं सोता और हमें भी सोने नहीं देता। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब भक्तों से पूछा क्या वर चाहिए, कोई बच्चे श्रीधर से पूछा ऐश्वर्य चाहिए ऑपुलेंस चाहिए क्या चाहिए, कोई बच्चे श्रीधर ने कहा अगर आप कुछ वर देना चाहते हो तो ये वर दीजिए कि हर जन्म में मुझे आपकी संगत मिले। और ये है ना कि महाप्रभु ने कहा मांगो जो मांगना चाहते हो, खुनो बचो सीधा ने क्या मांगा कि वो शुद्ध भक्ति की भीख मांगी, किसी प्रकार के भौतिक सुख की नहीं। तो ये होना चाहिए हम सब का भाव। और महाप्रभु इतने आभारी थे इस भक्त के प्रति, जब महाप्रभु एक आंदोलन ले गए थे चंद काजी के महल में, और महाप्रभु ने लगभग 10 घंटे लगातार कीर्तन किया, उसके बाद उन्हें प्यास लगी, पानी पीने की इच्छा थी, और पानी उन्होंने पिया उस झूठे बर्तन में जो खोलावचे श्रीधर के घर में था। खोलावचे श्रीधर के बर्तन को लेकर उससे पानी पी रहे थे, और खोलावचे श्रीधर ने जब ये देखा उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हो, मेरे झूठे टूटे बर्तन से पी रहे हो। महाप्रभु ने कहा मैं अपने आप को शुद्ध बना रहा हूं इस वहां से पानी पीकर। तो इस प्रकार भगवान उनके भक्तों की अनेक लीलाएं हैं। आज के वातावरण में हम भौतिक विषय में रुचि लेते हैं, फिल्मी कलाकार की लीलाओं में, राजनीतिक नेताओं की लीलाओं में, पर हमें रुचि लेनी चाहिए किस में, आध्यात्मिक भगवान के भक्तों की लीलाओं में। तो यहां संत कुमार कह रहे हैं कि हमें सदा भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, भगवान की लीलाओं के साथ भगवान के उपदेश का भी स्मरण करना चाहिए। उदाहरण के लिए भगवान का जो उपदेश है भगवद गीता का, उसका हमें स्मरण करना चाहिए। और अगर मन शुद्ध भावों में जुड़े रहेगा तो बचेगा क्या गलत भावों से। तो कुमार ने कहा भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। आगे कहते हैं बिना किसी भौतिक कामना के याम नियमों का पालन करो। तो नियमों का पालन करो किस भावना से, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति के लिए, शुद्ध भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए। शास्त्र में भगवान कहते हैं, भगवद गीता में भगवान कहते हैं चार परिस्थिति में लोग मेरी शरण में आते हैं। कौन है ये चार, चतुर्विधा जाते भाव, एक है जैसे धन चाहिए, तीन तो है सकाम भाव के, बोले धन चाहिए, कष्ट में है रोगी पीड़ित जिज्ञासु, और एक है जो ज्ञान के आधार पर भगवान की सेवा में आता है निष्काम भाव से। निष्काम भाव से जुड़ोगे तो हमेशा शांत रहोगे। वैसे तो भगवान कहते हैं सकाम भाव से भी जुड़ना तो जुड़ो, पर भक्ति में इतनी शक्ति है कि भक्ति के नियमों के पालन से जो भौतिक भाव है वो शुद्ध हो जाते हैं। तो यहां कुमारस कह रहे हैं कि हमें भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए और निष्काम भाव से भगवान के सेवा में जुड़ना चाहिए। और साधु संगत हरि नाम के उच्चारण शास्त्र के अध्ययन द्वारा इस विषय का हमें ज्ञान मिलता है। आगे कह रहे हैं कि हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्द में हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। इस विषय में चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा है जो उन्होंने सनातन गोस्वामी को दी थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा भक्ति का सुंदर बगीचा बड़ी सरलता से नष्ट हो सकता है, किस कार्य के द्वारा, वैष्णव अपराध के द्वारा। तो इसलिए हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। अनेक प्रकार के अपराध हैं, सेवा अपराध, आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, इसमें कई अपराध हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, गुरु अपराध, नाम अपराध, इन अपराधों से हमें बचना चाहिए, खास करके वैष्णव की निंदा से हमें बचना चाहिए। और कहीं भौतिक समाज में तो हमें एक दूसरे की आलोचना करने में बड़ा आनंद आता है, पर भक्ति के मार्ग में हमें वैष्णव निंदा से बचना चाहिए। और सबसे सरल सबसे उत्तम मार्ग है जब आप दूसरों के गुणों को देखो और दूसरों के उत्साह को बढ़ाने का प्रयास करो। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हमें वैष्णव निंदा से क्या करना चाहिए, बचना। तो आप कहोगे हम करें क्या, वो दूसरा हमारा मित्र है, वो तो हमेशा निंदा ही करते रहता है। तो जब निंदा करता है आप वहां से बच जाओ, आप कहो कि हमें निंदा नहीं सुननी, क्योंकि निंदा सुनने से हमारी भक्ति जो है कमजोर हो जाएगी और इस कारण हमें इससे बचना है। तो वैष्णव अपराध से बचो और वैष्णव निंदा से बचो, और वैष्णव अपराध और निंदा से बचोगे तो महाप्रभु ने कहा भक्ति का जो बगीचे बीज है उगते जाएगा और अंत में भगवत प्रेम प्राप्त हो सकेगा। पर अगर हम निंदा इत्यादि में जुड़ेंगे तो जो भक्ति का जो लाभ है वो मिट जाएगा। इसलिए हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। फिर आगे यहां कहा गया, कुमार उपदेश दे रहे हैं, भक्त को अत्यंत सादा जीवन बिताना चाहिए। कैसा जीवन? सादा जीवन। इसलिए प्रभुपाद जी हमें कहते थे आवर प्रिंसिपल इज सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। सादा जीवन, सादा जीवन का अर्थ है उतना ग्रहण करो जितना आवश्यक है और उससे अधिक नहीं। और ऊंचा विचार, ऊंचा विचार का क्या अर्थ है कि आप आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक हो और जिन विषयों का वर्णन कर रहे हैं आज उसमें आप ध्यान दे रहे हो, और इस प्रकार का भाव रहेगा तो आप आध्यात्मिक उन्नति में आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकोगे। भौतिक वादियों का क्या जी लक्ष्य रहता है? उनका सिद्धांत है ऊंचा जीवन सादा विचार, रहो राजा जैसे। और आजकल तो क्रेडिट कार्ड का जमाना है और कईयों के पास एक नहीं दस दस क्रेडिट कार्ड होते हैं। तो अगर धन नहीं भी है कर्जा ले लो, बैंक वाले तो आपको इनकरेज करते हैं कर्जा लो, इसी में उनकी कमाई है। तो भौतिक नियम क्या है? ऊंचा जीवन सादा विचार, रहो राजा जैसे और सादा विचार, सोचो किस प्रकार पशुओं के समान। कहां है इंद्रिय तृप्ति की सुविधा और सुबह से रात तक इंद्रिय तृप्ति में रुचि लो। तो ये है भौतिक जीवन। पर आध्यात्मिक जीवन के लिए कहा जा रहा है क्या? सादा जीवन निभाने का प्रयास करना चाहिए। और सादा जीवन का अर्थ है उतना ही ग्रहण करो जितना कि आवश्यक है और उससे अधिक भगवान की सेवा में उपयोग करो। ऊंचा विचार, ये भाव है कि हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए कहा शरणागत होने के एक छह साधन हैं, जिनमें सबसे पहला यह है जो कि भक्ति के लिए अनुकूल है उसे आप स्वीकार करो और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे त्यागो। और इस विषय में रूप गोस्वामी जी कहते हैं हे मेरे प्रिय मित्र, जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, कृष्ण भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो। तो ऊंचा विचार का अर्थ है सदा हमारे मन में ये भाव रहना चाहिए कि हम भक्ति के मार्ग में उन्नति करें, और अगर हमें लगे कि इस कार्य द्वारा उन्नति संभव नहीं हो रही तो हमें उस कार्य को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए नहीं 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 ये तो अटैचमेंट है। कई बार भक्त आते हैं कहते हैं स्वामी जी क्या करें, ये तो हमारा आकर्षण है अटैचमेंट है। अगर आप जानते हो कोई कार्य अनुकूल नहीं है प्रतिकूल है तो हमें त्याग देना चाहिए। जैसे आपको अगर पता लगे कोई भोजन प्रतिकूल है तो आप क्या करोगे, त्याग। तो आगे वो क्या कहते हैं कुमार, आगे कहते हैं कि हमें चाहिए कि वो सदा सहनशील बने, उसे चाहिए कि वो उन्हें सदा करना सीखे। तो हमें सहनशील होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने इस विषय में क्या उपदेश दिया है, जनादपि थरोपि सहन, हमारी न मना देना कितना नहीं सारा है। से अत्यंत सहनशील हो, दूसरों को आदर दो बिना किसी आदर की उम्मीद रखे हुए। तो आप अभी ये पूछ सकते हो कि हमने सुन लिया कुमारराज का उपदेश जो उन्होंने पृथ्वीराज को दिया था, और ये उपदेश पूरी प्रजा के लिए था, किस प्रकार आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो सकती है। क्योंकि आज जिन विषयों का वर्णन किया, इन विषयों की चर्चा की गई है, उनके लिए जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। पर आप ये कह सकते हो या पूछ सकते हो कि हमारे में ये योग्यता नहीं है, ये शक्ति नहीं है, तो ये कैसे आएगी शक्ति सहनशील बनने के लिए, सादा जीवन बिताने के लिए, संतों की संगत में रहने की इच्छा, सदा भगवान की लीलाओं का स्मरण और भौतिक कामना से बचे, इन सब गुणों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है उत्तर, हरे नाम का उच्चारण करके। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान अवतारित होते किस माध्यम से, उनके नामों के माध्यम से। अगर हम सब माला का जाप करेंगे रोज, चैतन्य महाप्रभु ने सबको आदेश दिया है क्या, ये हरि नाम का उच्चारण करने के लिए। भगवान इतने दयालु हैं, कलयुग में प्रकट होते हैं किस माध्यम में, उनके नामों के द्वारा। तो ये हरि नाम का उच्चारण हर व्यक्ति कर सकता है। आप सबका तो सौभाग्य है कि आपने भारत भूमि में जन्म लिया है, जहां बचपन से ही आप हरि नाम की महिमा सुनते आ रहे हो और हरि नाम को सुनते आ रहे हो। पर उन देशों में भी जहां की कभी किसी ने हरि नाम सुना भी नहीं था, आज हरि नाम के बल पर, हरि नाम के उच्चारण के बल पर आज वो क्या बन गए हैं, शुद्ध ब्राह्मण बन गए हैं। एक बार किसी ने प्रभुपाद से पूछा, आप स्वामी जी कुछ चमत्कार कर सकते हो, क्योंकि ये उम्मीद की जाती है कि कोई संत महात्मा है तो चमत्कार करेगा। स्वामी जी ने कहा, नहीं मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता, पर एक चमत्कार जरूर किया है। तो उस व्यक्ति में बड़ी जिज्ञासा थी, कौन सा चमत्कार किया है, मैंने हजारों मलेच्छों को ब्राह्मण बना दिया। जो व्यक्ति बचपन से जुड़े थे पाप के कार्य में, आज वो बन गए हैं ऊंचे कोटि के ब्राह्मण। तो प्रभुपाद जी ने ये संस्था शुरू भी की हरि नाम के माध्यम पर और हरि नाम का कीर्तन करते हुए। आज अगर आप न्यूयॉर्क में जाओगे तो वहां एक बड़ा प्रसिद्ध पार्क है जिसका नाम है टॉमकिंस स्क्वायर पार्क। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, भारत से एक मृदंगा ले गए थे, तो उस मृदंगा को लेकर प्रभुपाद जी एक पेड़ के नीचे खड़े होकर कीर्तन करते थे, और इस कीर्तन ने आस्ते आस्ते कई अमेरिकनों को आकर्षित किया, और फिर इस प्रकार ये संस्था सारे विश्व में पहुंची। और आज अगर आप टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में जाओगे तो इस पेड़ के नीचे एक बड़ा सुंदर प्लैक सरकार न्यूयॉर्क सिटी ने लगाया पिछले साल, जिसमें लिखा है दिस इज अ ट्री अंडर विच the Hare Krishna movement was founded. He appeared. So, and this is where Bhaktivedanta Swami, the founder of the Hare Krishna movement, started his worldwide movement. So, ye sab should aram hota kaise ye Hari Naam ke madhyam se. So, aap sab jo yahan upasthit ho, jaise maine aram mein kaha tha, is sabha mein kai to dikshit bhakt hain, kai hain jo swara mala ka jap karte hain, par kai hain jo atithi hain, kai hain jo ravivar ko aate hain, ek mala, do mala, teen mala karte hain. Par aap sab jo aate ho, isliye aate ho, kyunki aapki adhyatmik karyo mein ruchi hai. और आपकी रुचि है कि आध्यात्मिक उन्नति भी करो. तो आज का जो हमने आपका श्लोक पढ़कर सुनाया है, ये भागवतम में दिया गया है, किस लिए? उन भक्तों के लिए जो कि आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं. तो आप ऐसे कितने भक्त आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो, एक बार फिर से सब? ये तो बड़ी अच्छी बात है. तो आप सब प्रयास करोगे. तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रवणम कीर्तनम की बहुत आवश्यकता है. श्रवणम कीर्तनम के बिना ये कार्य संभव है? असंभव है. और अगर आप श्रवणम कीर्तनम करोगे तो कठिन कार्य भी सरल हो जाता है. चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु की जी की असीम कृपा से अंधा व्यक्ति देख सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है, और लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों के पार जा सकता है. और चैतन्य महाप्रभु जी कृपा से कठिन कार्य सरल बन जाता है. तो आप सब कठिन कार्य को सरल बनाना चाहते हो? हाँ, सब सब चाहते हो. तो चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, है ना. तो उनकी कृपा से कठिन कार्य सरल हो जाता है, उनकी कृपा के बिना सरल कार्य कठिन हो जाता है. तो आप सब ये हरि नाम का जाप कीजिए नियमित रूप से. आप में से कितने भक्त हो जो कि 16 माला का जाप रोज नहीं करते? अच्छा. और जो बिल्कुल माला का जाप नहीं करते? सब करते हो, बड़ी अच्छी बात है. तो जो माला का जाप करते हैं उनका क्या प्रयास रहना चाहिए?
कि ध्यान से
जाप करें. तो यही आप सबसे निवेदन. चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक जीवन बहुत ही सरल बना दिया है. महाप्रभु का आदेश क्या है? पहला क्या है? हरि नाम का बोलो कृष्ण. दूसरा भागवतम और गीता का अध्ययन. तो मैंने जब पूछा था पहले कितने भक्त गीता रोज पढ़ते हैं, कईयों ने हाथ उठाया था. और तो जब हमने पूछा कि कितने भक्त भागवतम को रोज पढ़ते हैं, तो बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया. आप में से कितने भक्तों के पास श्रीमद् भागवत का सेट है घर में? तो ये अच्छी बात है. अगर आप भागवतम का सेट सबके पास होना चाहिए घर में. और भगवत गीता सबके पास है? और कितने भक्त हैं जिनके पास चैतन्य चरितमृत का सेट है घर में? बहुत कम. अच्छा. पंडित जी कह रहे हैं कि वो आउट ऑफ स्टॉक है. तो कम से कम भागवतम से तो शुरू करो. और यही चैतन्य चरितमृत का सार आपको प्राप्त है टीचिंग द लॉर्ड चैतन्य में. तो अगर चैतन्य चरितमृत नहीं प्राप्त हो रही इस समय, तो आप टीचिंग द लॉर्ड चैतन्य पढ़ सकते हो. ठाकुर भक्तिनो जी जो कि प्रभुपाद ने कहा, ही वॉज वर्चुअली द फाउंडर ऑफ दिस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट. तो ठाकुर भक्तिनो जी महान आचार्य थे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था, उसे सारे विश्व के महाविद्यालय में भेजा था और ठाकुर भक्तिनाथ जी को पूरा विश्वास था कि जो चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी है जरूर सफल होगी। उनकी भविष्यवाणी थी कि एक सेनापति आएगा जो कि इस शिक्षा को सारी दुनिया में पहुंचाएगा। वो सेनापति कौन था? श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद जी की हार्दिक इच्छा थी कि भारतवासी कृष्ण भक्ति को गंभीरता से स्वीकार करें। तो आप सब इस शिक्षा को ग्रहण कीजिएगा, गंभीरता से स्वीकार कीजिएगा और आगे इस शिक्षा का उपदेश भी दूसरों को पहुंचाइएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम लो, कृष्ण के शिक्षा को अपनाओ और घर घर जाकर लोगों को कहो कृष्ण की शिक्षा का लाभ उठाएं। इस प्रकार अब अपने जीवन को सफल बना सकते हो। हरे कृष्ण। आपको सुनाई दे रहा था? सबको पीछे भी सुनाई दे रहा था? तो आप सब इस श्लोक का लाभ उठाओगे, हर रविवार को आओगे मंदिर?
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की।
बोले सब हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। क्लास के संबंध में कोई प्रश्न है किसी का? हाँ पूछे, क्लास के संबंध में। हाँ
महाराज, सोलह माला तो जप करते हैं लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं, लिटरली वी फॉरगेट।
क्या भूल जाते हो?
मतलब महामंत्र करने के लिए भूल जाते हैं।
क्या
महामंत्र भूल जाते हैं? मतलब हमेशा लेना चाहिए लेकिन वो भूल जाते हैं।
अगर हमेशा नहीं ले सकते, सोलह माला का जाप तो करो। हाँ आप करते हो माला
जी?
और सोलह माला का जाप करो, अगर नियमित रूप से करोगे तो बाकी समय में भावना रहेगी करने की। और कोई प्रश्न? सब प्रसाद खाना जी। ओके, हरे कृष्णा।